ओम शांति। तो गीत के अल्फाज क्या थे? आंखों में बाबा तेरी, आंखों में बाबा तेरी, हाँ, देखे हैं कितने जलवे नजारे। और तो जब ये गाना सुन रहे थे तो क्या हो रहा था? अच्छा लग रहा था? सबके चेहरे पर खुशी आती है ना ऐसे कोई गीत सुनते हैं तो। आज की हम क्लास में लास्ट वीक में जितने वरदान चले वो रिवाइज करेंगे, कुछ पॉइंट्स रिवाइज करेंगे और आने वाली कल की जो मुरली है उसके मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। तो जैसे हम कह रहे थे कि चेहरे पर हमारे कितनी खुशी आ गई ये गीत सुनकर, तो इस वीक में एक वरदान था जहां बाबा ने कहा था कि अपने चेहरे पर वो झलक और फलक नजर आए। कब आएगी वो झलक और फलक? जब हमें प्राप्ति का वो नशा रहेगा, जब प्राप्ति हमारे सामने रहेंगी तो खुशी हमारे चेहरे से झलकेगी। तो कौन सी ऐसी पॉइंट बुद्धि में रखे कि हमारे चेहरे से वो खुशी नजर आए? तो जैसे कि इसी गीत में था कि बाबा की आंखें, बाबा की आंखों को जब हम देखते हैं, आपको याद होगा जब हम बाप दादा मिलन में बैठते हैं है ना, और बाबा से जब दृष्टि लेते हैं तो वो आंखों को याद करो, वो आंखें कैसी चमकती है, कितनी खुशी होती है वो समय। और जब बाबा स्टेज पर दादियों से मिलते हैं और बाबा जब उनको टोली खिलाते हैं उस वक्त देखो बाबा की आंखें। बाबा कितनी बार हम को देख रहा होता है, सभा को देख रहा होता है, बाबा की नजर सिर्फ उन आत्माओं पर नहीं होती जो स्टेज पर होते पर उन आत्माओं पर भी होती जो सभा में बैठे होते हैं। और बाबा जब जाता है उस वक्त वो आंखें कितनी गीली गीली वो आंखें होती है, ऐसा लगता है इसको जाना नहीं है अभी, है ना, रो रहे हैं। तो बाबा की वो आंखों को जब हम याद करते हैं तो भी हमारे चेहरे पर वो खुशी आ जाती है कि हमको कौन मिला है, कौन हमको दृष्टि दे रहा है ना। तो जब हम योग में बैठते तो एक प्रयोग कर सकते, इमर्ज करे वो बाप दादा मिलन को अपने सामने, वही बाबा जो हमको दृष्टि दे रहा है, और उस दृष्टि को रोज लेना है बाबा से। ऐसे नहीं कि अभी 6 महीना रुकेंगे, सीजन आएगा फिर हम कुछ देखेंगे रिकॉर्डिंग या बाबा आएंगे और फिर हमें वो दृष्टि मिलेगी, नहीं, हम रोज उस सीन को इमर्ज कर सकते हैं सामने अपने योग में और बाबा से वो दृष्टि ले सकते हैं, है ना। तो तब हमारे चेहरे पर वो झलक और फलक नजर आती है। और कब झलक और फलक और वो खुशी नजर आती है चेहरे पर? कब नजर आती? सेवा में। हाँ, जब हम यज्ञ सेवा करते हैं, आप सब सेवा के लिए आए हो ना यहाँ, जब हम यज्ञ सेवा करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। कल की मुरली में, बाबा ने सेवाधारियों से मुलाकात की है और बाबा ने कहा कि यज्ञ सेवा का बहुत बल है, या अगर 1 सेकंड भी यज्ञ सेवा करो तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। बाबा ने कहा कि सेवा में ही बिजी रहो तो माया नहीं आएगी। तो यज्ञ सेवा, छोटी छोटी सेवा जो हम करते हैं, जैसे हम रोटी बनाने की सेवा करते हैं या खाना परोसने की सेवा करते हैं या कोई सिक्योरिटी में करता है ना, कुछ भी, सब्जी काटने की सेवा, छोटी सी छोटी यज्ञ सेवा हमको कितना बल देती है, कितना खुशी देती है। तो ये भी हमारे चेहरे पर वो खुशी और फलक लाएगी। तो कल की मुरली में सेवाधारियों से विशेष मुलाकात है बाबा की, और बाबा ने उसके अंदर कहा कि माया से सेफ रहने का साधन है कि बिजी रहना है। और फिर उसी पैराग्राफ में बाबा ने कुमारों से मुलाकात की है। तो क्या कहा है कुमारों को बाबा ने? बाबा ने कहा कि बीमारी में कोई याद तो नहीं आता, कभी ऐसे तो नहीं होता कि किसी को अपनी युगल बना लूं, बाबा तो एक युगल है ना, तो दूसरी क्यों चाहिए, बाबा ने कहा। फिर उसको भी संभालना पड़ेगा, फिर उसको भी खिलाना पड़ेगा, फिर उसका भी सुनना पड़ेगा। तो बाबा ने विशेष कुमारों से कहा है ये। बाबा ने कहा कि बीमारी के समय विशेष है ना, जब हम बीमार होते हैं उस समय विशेष ऐसा लगता है कि कोई हो साथ में, किसी कोई हमारे सिर पे हाथ रखे, हमारा सिर दर्द हो रहा है तो कोई हमको पूछे, तो कुमारों से विशेष बात है ये। बीमार होते तो बाबा ने कहा कि बाबा की याद में रहो, जो संबंध आपको खींचता है वो संबंध बाबा से जोड़ो। तो बीमारी में भी ऐसा लगेगा कि कोई और खाना अच्छा बना के चला गया, ऐसे बाबा ने कहा। कुमारों को बहुत चिंता होती है ना, अकेले रहते हैं तो खाना कैसे बनाएंगे, रोटी कैसे बनाएंगे। एक कुमार का हमको फोन आया था, कहा कि दीदी अभी मार्केट में एक रोटी मेकर आया है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कह रहा है बहुत महंगा है लेकिन इंडिया में है ही नहीं, कैसे उसको मेरे लिए अवेलेबल कर दो। तो हमने कहा कहाँ मिलेगा, तो बोला कि यूएस में है वो, इंडिया में है ही नहीं। मैंने कहा इतना विशेष है ये रोटी मेकर, तो कहा कि हाँ दीदी ये कुमारों के लिए वरदान है। तो ऐसी बातें हैं, लेकिन हमको अच्छा लगा सुन के उसकी लगन कि एटलीस्ट किसी बहन के लिए नहीं बोल रहा है, एक रोटी मेकर के लिए ही बोल रहा है ना। तो एक लगन है कि अपने हाथ से ही भोजन बनाकर खाना है। तो बाबा ने विशेष कुमारों से भी कल मुलाकात की, और कैसे खुशी आएगी हमारे चेहरे पर वो झलक और फलक जो बाबा ने वरदान में कहा। जब हम मुरली की कोई विशेष पॉइंट्स बुद्धि में रखते हैं तब हमें वो खुशी होती है। मुरली की पॉइंट्स बार बार रिवाइज करना, छोटी सी छोटी पॉइंट को अगर हम बुद्धि में रखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत मजा आती है ना। जैसे बाबा कुछ भी कहता है तो हमको अच्छा लगता है, कभी बाबा कहता है महामूर्ख देखना तो वो भी यहीं देखो, वो भी सुन के अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बाबा प्यार ही कर रहा है। एक बहन गल्फ कंट्री में आई और उसके हाथ में मुरली दी, मुस्लिम, तो उसने मुरली पढ़ी और मुरली का पहला शब्द मीठे बच्चे, सिर्फ इतना पढ़ा उसने मीठे बच्चे, और वो मीठे बच्चे पढ़ के इतना रोने लगी और ज्ञान में आ गई। तो देखो मुरली में कितना जादू है ना। तो मुरली के पॉइंट्स जब हम बुद्धि में रखते हैं तो भी खुशी होती है, और वो झलक और फलक हमारे चेहरे पर तब आती है जब हम मधुबन आते हैं, है ना। मधुबन आके हमको कितना रिफ्रेश फील होता है, मधुबन का वो आंगन, मधुबन के वो चार धाम कुछ अलग ही रौनक लाते हैं हमारे चेहरे पर। तो मधुबन में आना भी वो झलक और फलक अपने चेहरे पर लाना, वो प्राप्ति कि ब्रह्मा बाबा की तपस्या भूमि पे हम खड़े हैं, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा चले, जहाँ पे मम्मा थे, जहाँ पे हमने हमारी दादियों ने तपस्या की, उस स्थान पर हमको आने का चांस मिला है, तो हमको खुशी रहती है वो झलक और फलक। जब हम किसी को ज्ञान सुनाते है ना, कोई गाइड सेवा में है यहाँ पे, जो गाइड सेवा में, हाँ देखो जब गाइड सेवा करते हैं और किसी को ज्ञान की पॉइंट सुनाते हैं तो वो बहुत खुशी, वो खुशी और नशा होता है। तो उसी तरह से इस खुशी, इस फलक को, इस झलक को अपने चेहरे पर कायम रखने के लिए बाबा ने कहा, बाबा ने कहा जब प्राप्तियों को याद करेंगे, जब बाबा ने हमको हेल्प किया किसी चीज के लिए, उन पॉइंट्स को अगर हम रिवाइज करते कि ये विशेष पॉइंट पर, ये विशेष परिस्थिति में बाबा ने मेरी हेल्प की थी, तो बहुत, तब भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वो जब याद आता है तो उसमें आंसू आ जाते। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, बाबा के जो सैक्रिफाइसेस है, बाबा की जो तपस्या है, उन सब चीजों को जब हम याद करते हैं तो हमको वो खुशी और फलक आती हमारे चेहरे पर। इतनी सारी पॉइंट्स बुद्धि में रखने पर खुशी, फलक, झलक सब आती है, लेकिन कभी कभार फिर भी ऐसा होता है कि हमारी वो झलक और फलक चली जाती है ना। तो कौन सी ऐसी पॉइंट है जिससे वो चली जाती है? जब हम किसी श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो वो चली जाती है। और हाँ, दे अभिमान, अमृत वेला मिस करते तो होता है, किसी की बातों के प्रभाव में आ जाते तो होता है, और पर चिंतन, पर दर्शन, कोई परिस्थितियां आती है तो होता है, कोई हमारी इंसल्ट करता है तो होता है, हम इतने प्यार से यज्ञ सेवा कर रहे हैं, सुबह से उठे हैं, रोटी बना रहे, सब्जी काट रहे, परोस रहे, और थोड़ी सी गलती हुई और किसी ने बोल दिया तो वो झलक और फलक चली जाती है ना, चली जाती है ना। कोई हमारे बारे में गॉसिप कर रहा है, कोई हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है तो चली जाती है। बहुत छोटी छोटी बातों पे, जैसे कि अगर हम चल रहे हैं और हमने किसी को ओम शांति किया और सामने से ओम शांति किसी ने नहीं बोला तो भी गई वो झलक और फलक। तो कितनी छोटी छोटी बातों पे जाती है, तो उसको कायम रखना है, तो बुद्धि में बहुत सारी पॉइंट्स याद रखनी पड़ेगी उसको कायम रखने के लिए। तो जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जितनी मुंह उतनी बातें, है ना, तो बोलने वाले तो बोलेंगे ही, आपको भी दो कान दिए भगवान ने, तो एक से सुनो से निकालो, लेकिन जब बाबा ज्ञान बोल रहा है तो बुद्धि में धारण करो, है ना। और जैसे बाबा हमेशा कहता है कि कोई ना कोई आत्मा हमारी परीक्षा लेने के लिए आती है, अगर वो आएंगे ही नहीं, अगर वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पर है। अगर हमको पता करना है कि हम वेयर डू वी स्टैंड, तो हमको ऐसी परिस्थिति आनी चाहिए। और कहते हैं कि कोई ना कोई हमको सर्टिफिकेट देने आता है ना, सर्टिफिकेट देने आते हैं लोगों को आदत होती है सर्टिफिकेट देने की, कि तुम ऐसे हो, दे देते दिन भर में। हम भी लोगों को सर्टिफिकेट देते देखना, तो वैसे ही लोग भी हमको सर्टिफिकेट देने आते। तो इन सब चीजों को बुद्धि में याद रखते हुए वो झलक और फलक हमारी नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक वरदान था इस वीक का। दूसरा वरदान बाबा ने मनन चिंतन पर कहा था। तो बाबा ने कहा कि मुरली की कोई एक पॉइंट, विशेष पॉइंट जब आप बुद्धि में रखोगे, तो वो बुद्धि, वो जो पॉइंट है वो आपकी प्राप्ति बन जाएगी, वो नॉलेज की पॉइंट आपकी प्राप्ति बनेगी। और जब वो नॉलेज की पॉइंट को आप यूज करते हो, तब वो आपका ट्रेजर बनता है, तब वो आपका खजाना बनता है। तो बाबा जब मनन चिंतन के बारे में कहते हैं, तो किसको याद करते हैं, कौन से जानवर को याद करते हैं? गाय को याद करते हैं ना। बाबा कहते हैं ना, गाय जो गाय उगारती नहीं, वो बीमार है। तो बाबा ने हमको भी कहा है कि मनन चिंतन करना है, और वो ज्ञान की जो घास है उसको बार बार उगारना है, है ना। तो और बाबा कहता है मनन चिंतन करेंगे तो मंथन से मक्खन निकलेगा, है ना। तो वो मक्खन निकलेगा कैसे, जब चिंतन करेंगे। अभी अगर किसी को चिंतन करने बोलो तो कहते कैसे चिंतन करना है ना। तो सबसे पहले तो चिंतन क्यों करना है, चिंतन करने से क्या होगा, जैसे उस वरदान में बाबा ने कहा था खुशी मिलेगी, चिंतन करने से खुशी मिलती, और क्या होता है चिंतन करने से, शक्ति मिलती है, बहुत सारी शक्तिशाली पॉइंट्स निकलती है, जिससे हम माया पर विजय पाते हैं, परिस्थिति में हम स्टेबल रहते हैं, और क्या होता है व्यर्थ से बच जाते हैं। जब मनन चिंतन में बिजी रहेंगे, बाबा ने कहा है कि दिन भर मनन चिंतन करो, एक मुरली में कहा था, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष टाइम पे मनन चिंतन करना है। ऐसे भी कहता है कि अमृत वेला का समय बहुत अच्छा है, सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करो, पर ऐसा भी कहा है बाबा ने कि दिन भर करो तो व्यर्थ से बच जाएंगे और जमा होता जाए। हाँ, कभी कभी मनन करते करते बाबा से योग लगता है, कभी हम योग में बैठे होते हैं और दिन भर की बातें याद आ रही होती है, उस समय मुरली की एक पॉइंट या कोई स्लोगन निकाल लो और जस्ट 5 मिनट उस पर चिंतन करो तो योग लगने लगता है। इतना ही नहीं, अगर हम जैसे चार धाम में कहीं पर भी बैठे हैं और सिर्फ मधुबन के नाम गिनाए, मधुबन के कितने सारे नाम है, सिर्फ मधुबन के नाम एक के बाद एक गिनाते गए और उस नशे में भी अगर हम आ गए तो योग लगता है। तो मनन से कितना कुछ फायदा है, मनन से हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है, हमारी बुद्धि भटकती नहीं है, है ना। तो मनन चिंतन से कितना फायदा है, लेकिन किसी को बोलो मनन चिंतन करना है तो कहते कैसे करे, है ना। लेकिन व्यर्थ का चिंतन करने के लिए कोई नहीं पूछता, आराम से हम सब कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी अगर कुछ आज हुआ होगा ना, तो बुद्धि वहां पर जा रही होगी अभी भी, है ना। कितने भी बिजी हम होंगे, लेकिन व्यर्थ का चिंतन करने के लिए हमारे पास टाइम होता है, लेकिन समर्थ का चिंतन करने के लिए हम पूछते हैं कि कैसे चिंतन करें। तो चिंतन कैसे करें, सब करते होंगे चिंतन, कैसे करें चिंतन, बाबा की कोई भी पॉइंट ले लो, पॉइंट ले लो और वरदान, बहुत अच्छा। कोई भी चित्र लो, उसके आगे बैठो और उसके ऊपर सोचने लगो, जैसे हिस्ट्री हॉल में अभी हम बैठे हैं, यहाँ पे कितने सारे चित्र हैं और हर चित्र के पीछे एक हिस्ट्री है, अगर आपको पता होगा तो। तो जब आप लोग किसी को लेके आते हो और समझाते हो, है ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं बोलना है ये हिस्ट्री हॉल है, यहाँ पे हमारे सब चित्र है और ये बाबा है, ये हमारी दादी है, ये हमारी मम्मा है, और निकले नहीं। अगर आप उनको कुछ स्टोरी सुना दोगे ना एक दो चित्र पे, तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। और अगर आप हमारे बीके भाई बहनों को ला रहे हो, तो बहुत अच्छे से इस पे आराम से आधा घंटा तो खड़े रहकर समझा ही सकते हैं। तो कोई भी चित्र लेकर उसके ऊपर चिंतन करना, कभी हिस्ट्री हॉल में बैठ के योग कर रहे, कोई भी एक चित्र को देखो और उसके बारे में उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करो, नहीं मालूम होगा तो किसको पूछो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे इन्होंने कहा चित्र को देखकर सोचना, वैसे ही अगर कोई भी टॉपिक मिली तो उसके बारे में सोचना कि इस टॉपिक के बारे में मुझे क्या पता है अभी तक, है ना, अभी तक मुझे क्या पता है। अच्छा, लौकिक में इसके बारे में क्या पता है मुझे, दुनिया वाले इस टॉपिक के बारे में क्या क्या बोलते हैं, ऐसे सोचना। अच्छा, ज्ञान की तरफ से इस पॉइंट को मैं देखूं तो बाबा ने अब तक मुरली में इस पॉइंट के बारे में क्या क्या बोला है, फिर उस पॉइंट को अव्यक्त पॉइंट से कनेक्ट करना, एक मुरली को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना। जैसे अभी हमने चालू किया कि चेहरे पर झलक और फलक और सेवा, तो आपने कहा यज्ञ सेवा से वो खुशी मिलती है, तो हमने कहा कल की मुरली में बाबा ने यज्ञ सेवा पे कहा, है ना। तो ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाना। कोई कोई टॉपिक हमको पता नहीं होती, हमको लगता है कि हमको पता है, जैसे कि मुरली में पॉइंट आया लास्ट वीक एक पॉइंट, तो बाबा ने कहा सर्वोदया लीडर, बाबा सर्वोदया लीडर है, सब पर दया करने वाला है। अब ये सर्वोदया लीडर कहाँ से आया ये पॉइंट, इसके बारे में पढ़ो जाके क्या है ये। जैसे बाबा कहते हैं माया का पॉम्ब, अभी पॉम्ब क्या है, पॉम्ब एक रोम में सिटी है, तो उसके बारे में पढ़ो। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो हमको नहीं मालूम होते पूरे, तो रिसर्च द टॉपिक, टॉपिक के बारे में रिसर्च करना चालू करो, है ना। तो इस तरह से हमारा चिंतन बढ़ेगा। कभी कभार हमको कुछ नहीं मालूम होता है, दूसरों को पता होता है, तो उनसे जाके पूछो कि इस टॉपिक के बारे में आप क्या जानते हो, तो हमको इनपुट्स मिलते हैं, तो हमारी बुद्धि को कुछ रॉ मटेरियल मिलता है आगे बढ़ने का। जैसे एक टाइम हमको टॉपिक मिला था स्पिरिचुअल सेल्फी, अब हम तो कभी सेल्फी नहीं लिए, तो हमको स्पिरिचुअल सेल्फी क्या बोले हम, तो हमने हमारे कजिन्स को बोला कि आप लोग सेल्फी क्यों लेते हो, ऐसे 8-10 लोगों को भेजा, तो 8-10 लोगों ने रिप्लाई भेजा, और उस रिप्लाई के ऊपर हमने क्लास बनाई फिर। और फिर जब पढ़ने गए कि सेल्फी क्या है, तो पता चला कि सेल्फी से तो एक बीमारी भी होती है, सेल्फाइटिस, साइकेट्रिक में एक डिसऑर्डर है, तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमको पता नहीं चलता, तो हम इंटरनेट से भी रिसर्च कर सकते हैं कोई भी टॉपिक के बारे में, तो उस तरह से हम चिंतन कर सकते हैं। अब चिंतन करने के लिए जैसे हमने कहा कोई टाइम नहीं है, हम कभी भी कर सकते हैं, तो अभी एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। जैसे इस वरदान में था कि बाबा ने कहा एक पॉइंट को उठाओ, उसको बुद्धि में दिन भर रखो और उस पर चिंतन करो, तो क्या करेंगे। अभी हमेशा तो कोई हमको बोलेगा नहीं आके क्लास लो, और हमको रुकना नहीं है कि क्लास लेने के लिए हमको चिंतन करना है, चिंतन तो रोज करना है ना। तो रोज की मुरली से कम 5 पॉइंट्स हाईलाइट कर दे, या तो अपनी छोटी सी डायरी में लिख दे, और फिर उस डायरी पे वो पॉइंट्स पे उसको रिवाइज करे और उस पर चिंतन करे। जैसे कोई भी मुरली का स्लोगन उठा ले, है ना, जैसे आज की मुरली का स्लोगन क्या है, अपकारी पर उपकार करने वाले, है ना, निंदक का मित्र बनाने वाले ही बाप समान है, है ना। तो अभी अपकारी पर उपकार करने वाले, तो अपकारी पर उपकार करने वाले में क्या क्या क्वालिटी होगी, उसमें कौन से दिव्य गुण होंगे, उसमें ऐसी कौन सी शक्ति होंगी कि वो अपकारी पर भी उपकार करेगा, है ना। सहन शक्ति आएगी, समाने की शक्ति आएगी, कैसे आएगी वो, है ना, तो वो कैसे करेगा। अच्छा, बाबा के जीवन को देखो फिर, बाबा के जीवन में बाबा ने कैसे किया, कोई यज्ञ की स्टोरी याद करो, है ना, तो कैसे कनेक्ट हो रहे पॉइंट। निंदक को मित्र बनाओ, निंदक को मित्र बनाओ। अच्छा, मित्र क्या होता है, निंदक क्या होता है, ओके, निंदक को जब मित्र बनाएंगे तब हम बाप समान बनेंगे। अच्छा, बाप समान बनने में ये 2-3 क्वालिटी एक स्लोगन में बोली बाबा ने, लेकिन बाप समान बनने में और कौन सी क्वालिटीज आती है, और कौन से पॉइंट्स आते हैं, तो ऐसे चिंतन कर सकते स्लोगन को लेके। फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि हमको ब्लेसिंग कार्ड मिलते हैं ना, मधुबन में आप लोग आते हो तो सौगात के साथ ब्लेसिंग कार्ड भी मिलते हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सारे ब्लेसिंग कार्ड्स है, तो जब हम हमारे सेवा पे जाते हैं, हमारे डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो उस ब्लेसिंग कार्ड को हम साथ में रख सकते हैं, उस ब्लेसिंग कार्ड पर चिंतन कर सकते, पॉइंट्स लिख सकते। हम ले तो लेते और अपने पर्स में रखते हैं, बहुत खुश होते हैं। कोई कोई तो अपने डेस्क पे सजाते जाके, मिरर पे सजाते हैं उसको जाके, लेकिन उस पर चिंतन करना है ना, वो मिल गया ना, उस पर चिंतन करो और कम से कम 20 पॉइंट तो लिखो, तो वैसे कर सकते। दूसरा, जब हम मधुबन में है, हम जहां पर भी चलते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्लोगन लिखे हुए यहाँ पे, है ना, कोई ना कोई स्लोगन है, जैसे चित्र बोला वैसे स्लोगन भी लिखे हुए यहाँ पे, तो उन स्लोगन एक दिन पे एक भी उठाएंगे तो भी चलेगा, तो एक दिन पे वो एक स्लोगन को उठाना और उस पर चिंतन कर सकते। ऐसे ही बहुत लोग थॉट फॉर द डे का कैलेंडर लेके जाते हैं, थॉट फॉर द डे का कैलेंडर जब टेबल पे रखते हो तो रोज एक थॉट होती है ना उस पे, उस थॉट के ऊपर भी चिंतन कर सकते, है ना। आजकल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे लोग थॉट्स भेजते हैं, लेकिन हम थॉट्स पढ़ के क्या करते, फॉरवर्ड, अच्छा लगा फॉरवर्ड, नहीं भी अच्छा लगा तो भी फॉरवर्ड, पहले फॉरवर्ड करते और फिर वो रहता है अपनी गैलरी में। तो इससे अच्छा अगर वो थॉट अच्छी लगी तो उस पर और क्या, उस पर और क्या चिंतन कर सकते, तो इस तरह से मनन चिंतन कर सकते। फिर बाबा ने आज की मुरली में बहुत अच्छा कहा ना, खांसी भी आएगी तो बाबा को क्या है, बीमारी हुई तो बाबा को कोई कुछ नहीं होता, बाबा साक्षी होके देखता है, बाबा को कोई अफसोस नहीं होता। और बाबा ने कल भी कहा था ना, कोई मरे तो भी बाबा शिव बाबा को दुख ही नहीं होता, बाबा मरना तो है ही, इसमें अफसोस की क्या बात। तो भगवान कितना डिटैच है। कल की मुरली में, कल की मुरली का टाइटल है छोड़ो तो छूटो, तो छोड़ो तो छूटो में फर्स्ट पॉइंट, चार पॉइंट्स बोले उसमें बाबा ने। छोड़ो तो छूटो में बाबा ने कहा कि इस तन से भी न्यारे हो, देही अभिमानी बनो। सेकंड बाबा ने कहा संबंध संपर्क, संबंध में लगाव मुक्त बन, नष्ट मोहा बनो। तीसरा बाबा ने कहा सेवा के सफलता के क्षेत्र में। और चौथा स्वभाव संस्कार। तो फर्स्ट पॉइंट लेंगे देह, क्योंकि बीमारी से कनेक्टेड पॉइंट। अगर आपको याद होगा लास्ट संडे की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा था, साक्षी बीमारी देह से भी साक्षी, ये तन मेरा नहीं बाबा, ये तन तेरा है। तो कितना साक्षी दृष्टा होना, तो बीमारी में साक्षी हो जाना। तो छोड़ो तो छूटो मतलब हमने ही हमारी बीमारियों को पकड़ के रखा है। देखो बाबा कैसे कह रहा है, खांसी आएगी, कर्म भोग आएगा। बाबा ने कहा चाहे कितना भी योग लगाओ, कर्म भोग तो चुकतू करना ही पड़ेगा, है ना, ऐसे ही कहा कर्म भोग तो चुकतू करना ही पड़ेगा। तो कितना डिटैच होना पड़ेगा। इस्लाम में एक प्रॉफिट थे अय्यूब अलैहिस्सलाम। ये प्रॉफिट की कहानी में बताते हैं कि ये अल्लाह को बहुत याद करता था, बहुत प्यार से दिन रात याद करता था। एक समय आया जब वो बीमार हुआ, तो पहले जब वो ठीक था और बहुत अच्छा था तो एक फरिश्तों की सभा बैठी और सब लोग डिस्कस करने लगे कि अय्यूब अल्लाह को इतना याद करता है, इतना प्यार से याद करता है, दिन रात याद करता है। तो ये देखकर ना इबलिस, इबलिस जो है वो शैतान है, इबलिस को जेलेसी होती है। इबलिस बोलता है नहीं नहीं वो शो ऑफ करता है। तो इबलिस अल्लाह के पास जाता है और अल्लाह से कहता है कि ये अय्यूब जो है ना ये आपको प्यार व्यार नहीं करता, ये सिर्फ शो ऑफ कर रहा है आपको इम्प्रेस करने के लिए। तो अल्लाह मुस्कुराते और कहते नहीं ऐसा नहीं है। तो इबलिस कहता है आप उसकी उसके पास कितना पैसा है, सब पैसा ले लो फिर देखते हो आपको याद करता है क्या। तो अल्लाह कहते जा तू ये कर, तो वो उसके सारे पैसे ले लेता है। तो भी अय्यूब खुश होता है और अच्छे से देखता है अपना सब कुछ और अल्लाह को याद करता है, दिन रात इबादत करता है। फिर इबलिस कहता है अल्लाह से कि आपने तो खाली उसकी पैसे लिए ना, अब उसका महल ले लो फिर देखना क्या होता है, फिर तो वो आपको ही ब्लेम करेगा और याद नहीं करेगा। तो ये भी ग्रहण करते हैं, अल्लाह मुस्कुराते और कहते कि जा तू ये कर, लेकिन तू उसकी इबादत को कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर उसका घर चला जाता है, ऐसे करके उसके बच्चे को भी, बच्चों को भी निकाल देता है। एक समय आता है जब इबलिस अल्लाह से कहता है कि इंसान के पास सब कुछ चला जाए तो भी चलेगा, लेकिन जब उसकी उसको बीमारी आती है ना तब है ना वो कैसे तुझे याद करेगा, मतलब ऐसे। तो अल्लाह मुस्कुराते और कहते कि तू उसके तन पे पूरी बीमारी दे दे लेकिन तू उसके दिल को नहीं छू पाएगा। और फिर वो ऐसे ही होता है कि वो बहुत बीमार हो जाता है, इतना बीमार कि बेड पे लेटा रहता है और उसके पूरे बदन पर कीड़े हो जाते हैं। कीड़े नीचे भी गिरते ना तो भी अय्यूब अपने कीड़े को उठा के रखता है और सोचता है कि अल्लाह ने मुझे ये बीमारी दी ना। वो इतना अपने बॉडी से साक्षी होता है और अल्लाह के प्यार में, जैसे बाबा कहता है ना कि मेरी याद में खो जाओ, तो वैसे ही वो अय्यूब की स्टोरी बताते हैं। तो उसकी वाइफ एक दिन कहती है कि है ना बोलो ना अल्लाह को कि रहम करे हम पर। तो अय्यूब रिप्लाई करता है कि हमने इतनी जिंदगी बिताई शोहरत में, इतनी खुशी में, कितने साल तक। तो कहती 80 इयर्स। तो वो बोलता है कि ये बीमारी कितने साल से, तो बोलते 7 इयर्स। तो बोले इतनी सी चीज के लिए मैं अपने अल्लाह को क्यों बुलाऊं। तो देखा कितना डिटैच है ना। तो इस शरीर के बीमारी से बाबा ने कहा कि छोड़ो तो छूटे, हम उसको पकड़ के रखे हैं इसलिए हम छूट नहीं पाते। हमारे पास मधुबन निवासी भी एडमिट थे, इतने अपने शरीर से डिटैच। हम बताएंगे एक भाई थे जिनको कैंसर था और उनका ऑपरेशन हुआ और 6 महीने में वो डिट्यूरेट होते जा रहे थे। लेकिन इतने खुश कि आप देख के बोलेंगे अरे बाप रे इतनी बड़ी बीमारी और ऐसे। और क्या कहते थे कि अभी मैं शरीर छोड़ूंगा और मैं जाकर छोटा बच्चा बनूंगा, है ना, वंडर है ना। तो ऐसे भी लोग हैं अपने यज्ञ में। ऐसे एक और भाई थे जिनको डायलिसिस था, डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था, बार बार एडमिट हो रहे थे कॉम्प्लिकेशन के साथ, लेकिन उफ तक नहीं करते थे। लेकिन वो उनको आप देखोगे तो ऐसे योगी, एकदम अपने शरीर से डिटैच। अब हमारे दादियों को देखेंगे, है ना, दादियां भी कितनी अपने शरीर से डिटैच है। तो बाबा ने यही कहा कि तन से भी न्यारे देही अभिमानी बनना। इसी तरह से छोड़ो तो छूटे में और भी पॉइंट्स आएंगे। जैसे बाबा ने कहा कि संबंधों में लगाओ, है ना, संबंधों में लगाओ। सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं लेकिन फिर भी याद आती है, फिर भी फोन करेंगे उनको, फिर भी उनको पकड़ पकड़ के रखेंगे और बोलेंगे कि वो फोन करती है, मम्मी फोन करती मुझे, मैं नहीं फोन करती, है ना। लेकिन हमने ही बांध के रखा है उन लोगों को। अभी यहाँ पे आते हो आप लोग भी तो फोन कॉल्स तो आते होंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे ही जो वाइब्रेशन होते हैं ना, हमारी जो इच्छा होती है छोटी छोटी, वो उनके पास पहुंचती है और वो लगाव में हम बंधे रहते हैं। उनको हमारी याद आती है ना। कुछ भी होगा तो सोचेंगे अरे बाबा ये तो ब्रह्मा कुमारीज में, ये तो थोड़ा स्ट्रांग है, बात तो इसी से कर लो, तो वो फोन करेंगे। हाँ, उनकी हेल्प तो करनी है लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उनसे भी डिटैच रहना है। ऐसे बहुत सारी चीजें छोड़ो तो छूटे में, जैसे हम सोच रहे थे आजकल के युग में मोबाइल को भी हमने पकड़ के रखा है ना, पर माया है वो हमारे लिए। और हम सोचते कि है ना, नहीं नहीं अभी छोड़ देंगे, अभी ज्यादा नहीं यूज करेंगे। एक कुमार था, उसने कहा कि दीदी मैं ना अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर रहा हूँ एक हफ्ते तक। मैंने बोला अनाउंस करके, हाँ अनाउंस करके 48 आज में वापस व्हाट्सएप पे। तो कहा हो ही नहीं रहा। तो वही ना, हमने कितना पकड़ के रखा है उसको, व्हाट्सएप को, हम ही ग्रुप्स में इतने इन्वॉल्व है इतने सारे, और फिर कहते हैं कि बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है, और कोई कुछ भेजता है तो हम उसको ऐसे ऐसे, है ना, कुछ कुछ इमोजीज भेजते रहते हैं और रिप्लाई करते, तो वापस से वो रिप्लाई आता है। तो हमने छोड़ा क्या, हम ही तो पकड़ के रखे उसको। तो व्हाट्सएप पे भी हम कितने इन्वॉल्व है। ऐसी छोटी छोटी बातों को चेक करना कि किस पे हम इन्वॉल्व है, छोड़ रहे नहीं है हम, पकड़ के रखे, लेट गो ही नहीं कर रहे हम किसी चीज को। जैसे अगर इस माइक को पकड़ के रखे, थोड़ी देर पकड़ के रखे, है ना, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, हाथ तो दर्द होगा ना, तो बुद्धि में भी वो बात बैठती जाती है, जिस बुद्धि में, जिस बात को हम पकड़ के रखते हैं। ऐसे बाबा ने कहा स्वभाव संस्कार, संस्कार हमने ही पकड़ के रखे। जैसे अगर मुझे क्रोध आ रहा है, अगर मैंने क्रोध पे चिंतन ही नहीं किया तो मेरा क्रोध कभी नहीं जाएगा। फिर मैं 10 लोगों को जाके सुनाऊंगी कि आज ऐसा हुआ तो मेरे को क्रोध आया, लेकिन मैंने उस पर काम ही नहीं किया, मैंने सोचा ही नहीं कि क्यों क्रोध आ रहा है, इसको मैं कैसे जीतूं, बाबा की मुरली में क्या है क्रोध के ऊपर, तो मैं कैसे करूं। ईर्ष्या, ईर्ष्या भी ऐसा विकार है जो अंदर से पूरा इंसान को जलाता है। अगर लेकिन पता चल जाना कि ईर्ष्या है, इससे ही उससे मुक्ति हो जाएगी, है ना। लेकिन इंसान को पता ही नहीं चलता, वही कंपैरिजन में लगा है, कंपटीशन में लगा है, किसी से रेस कर रहे हैं हम, है ना, तो फिर वो ईर्ष्या कैसे जाएगी। कहते कि ईर्ष्या जो होती है ना, वो जैसे कि एक सीढ़ी कैसे स्ट्रेट होती है, और कहते ईर्ष्या ऐसे गोल सीढ़ी है। आप आगे बढ़ोगे, आप देखोगे कोई आपसे ऑलरेडी आगे है, अब और स्टेप आगे जाने की कोशिश करोगे, ऑलरेडी कोई आपके आगे है। तो कहते हैं कि ऑलरेडी दुनिया में इतने लोग हैं, कोई ना कोई आपसे अच्छा होगा ही, आप आगे जाओ, कोई ना कोई आपसे इंटेलिजेंट होगा ही, कोई ना कोई आपसे खूबसूरत होगा ही, कितना कोशिश करोगे। तो ईर्ष्या ऐसी गोल सीढ़ी है जो कभी खत्म नहीं होती, है ना। तो इन सब चीजों का ज्ञान रखते हुए बाबा ने कहा छोड़ो तो छूटे। बाबा ने कहा मेरेपन को छोड़ो, इस मेरेपन की डाली पर बैठे हो, अगर इसको छोड़ दोगे तो पंछी उड़ जाएगा और फिर उड़ती कला में जाओगे। तो कल की मुरली में ये भी एक पॉइंट है, छोड़ो तो छूटे। इस वीक में बाबा ने एक वरदान कहा था होली हंस पर। आज हमें होली हंस दिख रहे थे, ये जो आए हैं ना भट्टी वाले, ये नक्की पर घूमते हैं ना, फिर बगाउन लगा, एकदम ऐसा लगता है जैसे होली हंस की सभा चल रही है, सफेद कपड़ों में चल रहे। तो बाबा ने लास्ट वीक मुरली में कहा था होली हंस, होली हंस अर्थात स्वच्छ, होली हंस अर्थात शुद्ध, पवित्र, जो शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले, है ना, तो प्योरिटी। तो हमेशा बाबा, हाँ, ज्ञान रत्न चुगने वाले, ज्ञान मोती चुगने वाले। होली हंस के बारे में बताते हैं ना कि वो मोती चुगता है, दूध और पानी को अलग करता है। तो उसी तरह से होली हंस अगर ये शब्द उठाए तो शुद्ध, पवित्रता, स्वच्छता है ना। तो पवित्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। जैसे देखो अभी इस वरदान को वो उससे कनेक्ट कर दो, चेहरे पे फलक और झलक और खुशी और होली हंस प्योरिटी है ना। अभी ये खुशी की झलक फलक ये कोई पाउडर क्रीम लगाने से नहीं आती, नहीं होली हंस में ऐसे होगा। तो इंसान की जो प्योरिटी है और रूहानियत है वही उसके चेहरे पर झलकती है। तो प्योरिटी जैसे कि बाबा कहते हैं ना कि हमारे जीवन का फाउंडेशन है, तो प्योरिटी पर काम करना, शुद्ध संकल्प, किसी के प्रति भी नेगेटिविटी नहीं रखना मन में। हमेशा बाबा ने कहा कि शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करो, लोगों के लिए शुभ भावना रखो, तब हम कहलाएंगे होली हंस। और प्योरिटी में और बात अगर आई आगे तो कहेंगे किसी की फेमिलैरिटी में नहीं आना, किसी से ज्यादा क्लोजनेस नहीं करना, नहीं तो फिर गिरेंगे। जैसे लास्ट संडे की मुरली में कुमारियों से मुलाकात है ना, बाबा तो हंटर लेके ही खड़ा था लास्ट टाइम, और कहा था कि कुमारियों के आकर्षण, कुमारियों की अपनी कमजोरी, पांडवों की अपनी कमजोरी। पांडव कुछ कुछ लेके आएंगे, खिलाने की चीजें, पहनने की चीजें, लेकिन कुमारी को आकर्षित नहीं होना है, उसको परखना है वो माया को। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी उसमें, तकदीरवान आत्मा वो है जो इसको परख पाएगी। तो परखना उस चीज को और उस पर जीत पाना। तो होली हंस इसमें और भी पॉइंट्स हम बोल सकते हैं कि जैसे कि होली, तो जैसे कि हम्बल, बहुत हम्बल निर्माण चित जो होंगे वो होली हंस होंगे, जिनको झुकने आता है ना। जैसे हम एक संगठन में रहते हैं, एक परिवार है, एक फैमिली है हमारी, हमको एक दूसरे के संबंध में आते हुए एक निर्माणता होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए है ना। कोई भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रिस्पेक्ट एक दूसरे से रखेंगे तब हम होली हंस कहलाएंगे। हमारा नेचर बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई हट नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए नेचर में, तब हम होली हंस कहलाएंगे। होली हंस लॉयल्टी, जिसमें फेथ हो, जिसमें ट्रस्ट हो, ऐसे को कहेंगे होली हंस है ना, जिसमें बहुत प्योरिटी हो और शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले, कोई नेगेटिविटी नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिविटी हमको कितना हार्म करती है। एक सोलोमन आइलैंड में एक झाड़ होता है, तो वहां पे अगर किसी झाड़ को काटना होता है तो कहते हैं कि उस झाड़ को काटते नहीं है, सारे लोग मिलके आजू बाजू खड़े हो जाते हैं उसके और कहते हैं सूख जा सूख जा सूख जा, कुछ हफ्तों तक करते ही है, मर जा मर जा मर जा, सूख जा सूख जा, और फिर वो झाड़ अपने आप सूख कर मर जाता है। इंसान के सिर्फ बोलने से अगर ये हो सकता है, तो हम अगर अपने में इतनी नेगेटिविटी रखेंगे तो कितना हमको उसका हार्मफुल इफेक्ट होगा। कोई बहने अपना अनुभव सुना रही थी, वो कह रहे थे कि उनके आंगन में एक आम का पेड़ है और वो आम का पेड़ इतने आम देता है कि बहुत सारे नीचे गिर जाते हैं, फिर इन लोगों को कलेक्ट करना पड़ता है, फिर इनके सेंटर पर इतना ज्यादा होता है कि दूसरे सेंटर पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, सेंटर के भाई बहनों को दो। तो बहनों ने संकल्प किया कि कितना काम करना पड़ता है, सबको देना पड़ता है सबको। नेक्स्ट ईयर वो आम का पेड़ आम ही नहीं दिया और उन लोग इतने चौंक गए कि एक संकल्प से अगर वो आम के पेड़ को ऐसा हो सकता है तो हमारे संकल्प से हमको क्या होता होगा। फिर उन्होंने विशेष योग किया और फिर वो आम का पेड़ आम दिया है ना। तो कितनी विचित्र बात है देखो। तो होली हंस मतलब शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले। कल की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, साकार पालना। तीन प्रकार के बच्चे बाबा ने गिनाए हैं। तो बाबा ने एक्चुअली सभा देखी, सहयोगी बच्चों की सभा, उसमें बाबा ने कहा तीन प्रकार के सहयोगी बच्चे। एक वो बच्चे जो डायरेक्ट बाप को देख के आ गए, बाबा को देखकर, बाबा की सीरत, रूहानी मूरत, मोहिनी मूरत देखकर आ गए। और दूसरे वो बच्चे जो ज्ञान गंगाओं को देखकर आए, जिन्होंने दादियों को देखा है ना, वो हमारी ज्ञान गंगाएं हैं, उनको देखकर आए। और बाबा ने कहा कि साकार पालना का आपको चांस मिला। साकार पालना पे बाबा ने कहा कि साकार पालना कोई साधारण बात नहीं है, साकार पालना कल्प कल्प में एक ही बार मिलती है, और साकार पालना का बाबा ने कहा तुमको रिटर्न देना है। तो साकार पालना पे हम सोच रहे थे कि बाबा ने देखो साकार पालना कैसे दी। कितनी बार गुलजार दादी अपने अनुभव में सुनाते हैं कि जब हम बच्चे थे तो बाबा ने हमको ऐसे प्रिंसेस की जैसे रखा। कहती है दादी कि हमको स्नान करने से पहले पूरा ऑयल लगाते थे बॉडी पर, मसाज करते थे, फिर हमको स्नान कराते थे, फिर हमको कपड़े वपड़े पहनाते थे और तैयार करते थे। जब रात का समय होता था सोने का तो बाबा एक एक बच्चे के पास जाते थे और मॉस्किटो नेट्स होते थे, मम्मा बाबा एक एक के बेड के पास पर्सनली जाके सबको रोज गुड नाइट करते थे, इतनी प्यार से पालना दी। तो बाबा के एक एक ऐसे अनुभव है। एक बार ऐसे हुआ कि कुछ माताएं मधुबन आ रही थी और रास्ता खराब था और गाड़ी कुछ नहीं आ रही थी ऊपर, तो कुछ रास्ता इनको चलकर आना था और बारिश हो रही थी बहुत, और कहते हैं कि ये माताएं चलकर आ रही थी। तो ब्रह्मा बाबा को ये बात पता चली कि माताएं आने वाली हैं। तो पता है बाबा ने क्या किया? बाबा मधुबन के गेट के पास गर्म पानी की बकेट और टॉवेल लेके खड़ा था, और जैसे ही सारी माताएं आई, बाबा ने एक एक माता के पैर अपने हाथ से धोए और टॉवेल से पोछा। सोचो तो कैसी पालना दी बाबा ने, है ना, कितनी बड़ी बात है ये। तो जब ऐसी बातों को याद करते तो उस साकार पालना का कितना महत्व है वो जानते हैं। बेगरी पार्ट में ऐसा हुआ था, एक बार सब भोजन के लिए बैठे और किसी की दाल खत्म हो गई, एक बहन की दाल खत्म हो गई, तो उसने दाल मांगी, तो दूसरी बहन ने कहा नहीं दाल खत्म हो गई है, दाल नहीं है। तो बाबा ने ये सुना तो बाबा ने अपनी कटोरी उठाई दाल की और उस बहन की कटोरी में दाल डाल दी, और अपनी कटोरी में बाबा ने पानी लिया और बाबा रोटी का टुकड़ा तोड़ तोड़ के पानी के साथ खाता गया। सोचो, हमारे, मुझे तो ऐसा लगता है हमारे लौकिक माँ बाप भी ये नहीं कर पाएंगे जितना बाबा ने किया। तो ऐसी पालना दी बाबा ने, है ना। और जैसे दादी कहती है कि जब सीजन का फ्रूट आता था तो सबसे पहले बाबा हमको खिलाता था वो फ्रूट, इतनी खुशी की बात है ये। यहाँ तक कि देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारा ड्यूटी आज हो जाता है, हम अपने रेस्ट पे जाते हैं, रेस्ट के टाइम पे हम किसी को बुलाते नहीं, बोलेंगे ये टाइम पे आओ, लेकिन बाबा अपने रेस्ट के टाइम पर भी बच्चों को विदाई देने, बाय करने के लिए आता था। बाबा कहता था जब पार्टी जाएगी तो मुझे बताना, मैं आऊंगा, और चाहे 1 बजे 2 बजे 3 बजे बाबा उठ के आते थे और पता है ना रुमाल हिलाते थे बाबा, और बस जाती थी। तो ये सब साकार पालना, तो बाबा ने कल की मुरली में साकार पालना के बारे में कहा है। इसी तरह से बाबा ने पुराने बच्चों को याद किया, पुराने पत्तों को, क्योंकि बाबा के सामने वो बच्चे बैठे हैं जो फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन थे, और उन फाउंडेशन का जो फल है वो बच्चे बैठे। 1983 की ये मुरली है, तो बाबा उसमें कह रहे हैं कि पुराने पत्ते नए पत्तों की चमक दमक देख के कहीं छिप तो नहीं जाते, ऐसा तो नहीं होता कि ये जो आदि वाले हैं ये छिप जाते, अभी नए जो है वो तो हम हैं जो अभी आए हैं, तो इनकी चमक धमक देखकर, है ना, ये छिप तो नहीं जाते। तो बच्चे होशियार है, बाबा से कहते बाबा हम पीछे वालों को चांस दे रहे। तो बाबा कहते हैं मुरली में कि चांस भले दो परंतु चांसलर रहो, है ना। तो पुराने पत्ते, अब आप मधुबन में हैं तो आपके पास बहुत अच्छा और विशेष चांस है इन पुराने पत्तों को देखने का। हम जब मधुबन में आए तो हमने इन पुराने पत्तों से बहुत कुछ सीखा, हमने किसी से बात नहीं की जाके कि आप क्या करते हो, क्या पुरुषार्थ करते हो, कुछ नहीं, सिर्फ इनको देखने से आप सीखेंगे। इनको देखते रहो, ये पुराने पत्तों को जो 30 साल 40 साल 50 साल से ज्ञान में है, और इनकी दिनचर्या देख के आप एक एक दिव्य गुण उठाते जाएंगे। जैसे हमने कैसे सीखा, हमने देखा इन मधुबन निवासियों की जो दिनचर्या है वो बहुत एक्यूरेट है, जो ये समय पर आपको वहां दिखेंगे ना वो वही दिखेंगे। 4:45 बजे अगर वो पानी पीते हुए दिखेंगे तो पानी पीते हुए दिखेंगे, अगर 3:30 बजे वो योग कर रहे होंगे तो वो योग ही कर रहे होंगे, वो हार्डली 1-2 मिनट पीछे होगा उन लोगों का, इतनी एक्यूरेसी है इनके दिनचर्या में। इनकी प्योरिटी भी बहुत बहुत हाई लेवल पर है, यहाँ तक कि ये भोजन की प्लेट भी अपने रखते हैं कितने बार, इसके लिए नहीं कि स्वच्छता एक चीज होती है, लेकिन हमने किसी से पूछा तो कहा कि ये हम प्योरिटी के लिए भी करते हैं, है ना। तो कितनी डीपली इनकी धारणाएं हैं, इनसे जाके पूछो तो पता चलेगा, खाली देखने से भी पता चलेगा कि ये पुराने पत्ते कैसे हैं और कितने फर्म हैं ये लोग। तो बाबा ने पुराने पत्तों के बारे में भी कल की मुरली में कहा है। और जैसे बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं, जो दूसरे प्रकार के बच्चे वो ज्ञान गंगाओं को देखकर आए। तो ज्ञान गंगाएं कौन है? हमारी दादियां, है ना। तो जगदीश भाई जी अपने अनुभव में कहते हैं वो कैसे ज्ञान में आए, वो जब वो सत्संगों में जाते थे, उनको बहुत पसंद था रिलीजन की बातें सुनना, तो ऐसे ही गए और वहां पर हमारी बहनों ने भी कुछ प्रवचन किया। तो उन्होंने देखा कि ये बहनों का भाषा पे तो कोई कमांड ही नहीं है, भाषा पे कोई कमांड नहीं है, लेकिन उनकी प्योरिटी कितनी है और ये कैसे बोल रहे हैं। तो जगदीश भाई जी उनके पीछे पीछे गए और कहा कि मुझे पता करना है कि ये क्या ज्ञान है। ऐसे ये जब कहानी हमने पढ़े तो हमको याद आ रहा था, विवेकानंद ने एक बार कहा है कि भारतीय नारी, एक समय आएगा जब भारतीय नारी सफेद साड़ी पहनकर विश्व को भगवान का मैसेज देगी। और यही चीज ये है कि ये हमारी दादियां जो खड़े होकर सबको ज्ञान दे रही थी वो समय, तो कितनी भावना से, है ना। तो ये ज्ञान गंगाओं को देखकर ये लोग ज्ञान में आए, जैसे जगदीश भाई जी है, निर्वैर भाई जी है, रमेश भाई जी है, ये सब सेकंड वाले हैं जो उनको देखकर आए हैं। ऐसे ही जगदीश भाई जी की इतनी भावना थी बहनों में कि जब वो दिल्ली सेंटर पर रहते थे और बहुत वहां पर गर्मी होती थी तो फ्रिज व्रिज तो था नहीं, और है ना पैसे भी बचाने हैं, 3 किलोमीटर की दूरी पर बर्फ की फैक्ट्री होती थी, तो जगदीश भाई जी वो आठाना 1 रुपया बचाने के लिए पूरा चल के जाते थे 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर चलने के बाद बर्फ की लादी अपने पीठ पर रखकर, अपने पीठ पर बर्फ की लादी 3 किलोमीटर चल के वापस आते थे सेंटर, और फिर अपने हाथ से ही बर्फ को तोड़ते थे और ठंडा पानी शरबत बनाकर बहनों को पिलाते थे। तो ऐसी थी ज्ञान गंगाएं जिनके पीछे इन्होंने ये किया, और हम बच्चों के लिए अभी ये सब भाई बहने और ये पुराने पत्ते हैं जिनसे हम सीखते हैं, है ना। जैसे रमेश भाई जी को हम देखते थे जब बीमार थे, डायलिसिस पे आते थे, और बाबा जैसे कहता है ना दधीचि ऋषि या हड्डी हड्डी सेवा में दे दो, वो हमने उनसे देखा, हमारे सामने तो वही एग्जाम्पल थे। उनका डायलिसिस चल रहा होता था और एक हाथ से उनका लैपटॉप पे काम चल रहा होता था 3-4 घंटा, बिल्कुल भी नहीं उन्होंने रेस्ट किया। एंड में जब उनको बेहोश भी नहीं होता था, बातें भी करते थे तो भी बहन को खड़ा करके डिक्टेशंस देते थे, और मतलब सेवा चलती रही। तो इस गुण को इनसे उठा लेना कि देखो कैसे बीमार होते हुए भी, इतनी बड़ी बीमारी होते हुए भी सेवा नहीं छोड़ी, और आज हमारे को थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हम सोचते थोड़ा चलो रेस्ट कर लो, है ना। तो कैसे ऐसी दादियों से, बड़ी दादी जी से इतना कुछ सीखा मधुबन निवासियों ने कि आज दादी जो करते थे वो हमको इनसे पालना मिल रही है ना। जब हम भट्टी में जाते कुमारियों की तो पहले दादी बाबा से दादी ने लिया, दादी से अभी इन बहनों ने लिया वो मक्खन और शक्कर और वो छोटी छोटी रोटी, है ना, वो खिलाते थे बाबा हाथ से। ऐसी बड़ी दादी मक्खन मानी तो वो है ना दादी भी खिलाते थे, आज भी जब हम जाते तो बड़ी बहने हमको खिलाती है वो। तो ये है पालना, एक दूसरे को पालना का रिटर्न देना। तो ये कल की मुरली है, और कल की मुरली में 2 प्रश्न है एंड में। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, तो ब्राह्मण जीवन का बाबा ने कहा लक्ष्य है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अब इसमें बाबा ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कही कि कोई हमको असंतुष्ट करने भी आए तो असंतुष्ट नहीं होना है, और शक्ति स्वरूप बन के बाबा ने कहा किनारा कर लो लेकिन असंतुष्ट नहीं हो। अभी किनारा फिजिकल लेवल पर किनारा नहीं, अगर हम एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे और अगर कोई असंतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है तो मन से, लेकिन उसकी असंतुष्टता हमको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। तो इस पे आप चिंतन कर सकते हैं कि हमारे असंतुष्टता का कारण क्या है, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब हमें कोई बुरा बोल देता है, जब कोई नीचा दिखाता है, जब कोई कुछ नहीं देता है, जब सहयोग नहीं मिलता है, तो असंतुष्टता होती है। तो असंतुष्टता के ये सारे कारण है। दूसरा बाबा ने कहा डिटैच हो जाओ, उनसे अलग हो जाओ। एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे रहो, जैसे कि देखो हम जूते पहनते हैं ना, पूरा दिन भर जूते चप्पल पहन के घूम रहे होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि हमने जूते पहने हैं। हम बार बार सोचते हैं क्या कि जूते पहने हैं चप्पल पहने हैं? ऐसे ही जिस व्यक्ति से प्रॉब्लम हो रही होती है ना उससे उतना वैसे ही डिटैच रहो, रहते हुए भी नहीं है वो हमारे लिए, तो असंतुष्टता नहीं होगी। तो बाबा ने कहा किनारा करो। और सेकेंड प्रश्न बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का निजी संस्कार क्या है, तो निजी संस्कार है, बाबा ने कहा आगे बढ़ो और बढ़ाओ। ऐसे नहीं बाबा ने कहा कि दूसरे को आगे बढ़ाने में खुद नीचे आ जाओ। तो कभी कभार ऐसे साकार मूल्य में पॉइंट आता है ना कि जिसका कोर्स हम कराते वो तो आगे निकल जाता है और हम पीछे रह जाते। तो बाबा ने कहा अपनी खुशी को मत गवाओ, अपना खुशी और अपना समय किसी के लिए मत गवाओ। तो ये हमारी धारणाएं पक्की होनी चाहिए। तो ये कल की अव्यक्त मुरली आने वाली और कुछ पॉइंट्स और कुछ वरदान जो थे वो ये वीक के वरदान थे। और कुछ किसी को कहना है? ठीक है, ओम शांति।